ओम शांति। बाबा ने हम सब के अरमान पूरे किए। किस किस के अरमान पूरे किए, जरा हाथ बैठाएं। थैंक यू। अब हमने बाबा के अरमान पूरे किए, किस किस ने किए? बात सुंदर। बाबा के जो अरमान है, बाबा की जो आश है, हम बच्चों को जिस रूप में वो देखना चाहते हैं, हम विचार करें इस भट्टी में कि हम बाबा के अरमानों को कितना पूरा कर रहे हैं। उसने अपना सर्वस्व हमें दे दिया, अपना सर्वस्व हमें दे रहे हैं, हमें पत्थर से पारस, कांटे से फूल बना रहे हैं, फर्श से अर्श पर जैसे उन्होंने हमें बिठा दिया है, सारे विश्व का हमें मालिक बना रहे हैं, इतना ऊंचा बनाने वाले बाबा को, अपना सर्वस्व हमें अर्पित करने वाले बाबा को हमें क्या नहीं देना चाहिए, जो हमारी हर छोटी बड़ी आवश्यकता को पूर्ण कर रहा है, हर कदम पे हमारी मदद कर रहा है। हम उसके दिल के अरमान को जरूर जरूर पूर्ण करें और ये हमारी प्राथमिकता हो। हर एक की अलग अलग प्राथमिकता होती है कि पहले मुझे ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है। तो बाबा के अरमानों को, बाबा की शिक्षाओं को, बाबा की आशाओं को पूर्ण करना मेरे जीवन की प्राथमिकता हो। हम भट्टी में ये जरूर चेक करें कि मेरी प्राथमिकता क्या है, किस चीज पर मेरा ध्यान बहुत ज्यादा जाता है, किस चीज पर मेरे संकल्प चलते हैं, किस चीज की ओर मेरी एनर्जी सबसे ज्यादा लग रही है। क्या वो आध्यात्मिक उत्थान की ओर है, ईश्वर की आशाओं को पूर्ण करने की ओर है, या अपनी ही मन की इच्छाओं के पीछे, कामनाओं के पीछे मन भागता रहता है। हर वर्ष बाबा आते हैं, अब सूक्ष्म में आते हैं, हम बाबा की मुरलियों को वीडियो के माध्यम से देखते हैं, लेकिन उसी भाव से हम बाबा की उन मुरलियों को सुनते हैं और बाबा के द्वारा दिए गए होमवर्क को पूर्ण करने का संकल्प भी हर वर्ष लेते हैं। क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट वो है जो अपने टीचर की हर बात को माने, उनके द्वारा दिए गए होमवर्क को पूर्ण करे। आपने देखा होगा अपने स्टूडेंट लाइफ में, आप सभी अनुभवी हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं होमवर्क कंप्लीट करके स्कूल जाते हैं, टीचर के सामने उत्साह के साथ, खुशी के साथ बैठते हैं, और जिन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ होता उन्हें हिचकिचाहट होती है, वो डर रहे होते हैं, उनके मन में थोड़ा ये होता है कि कहीं सर मुझसे ना पूछ ले। लेकिन टीचर भी उन्हीं से खुश होते हैं ना, उन्हीं ही दिल की दुआएं मिलती हैं जो होमवर्क करते हैं, वही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं जो होमवर्क करते हैं, ईश्वर के दिए होमवर्क को, अपने सुप्रीम टीचर के द्वारा दिए गए होमवर्क को। पिछले सीजन में बाबा ने हमें क्या होमवर्क दिया था, याद है? याद है जी, बताएं। पांच स्वरूपों का अभ्यास दिया था। ओके, क्रोध मुक्त और भाई बहनों, अच्छा ठीक है, और भाइयों बाबा ने पिछले सीजन में, चलिए हमने जितना किया, हमें जितना याद रहा और जितने भी अभ्यास हमने किए, बहुत अच्छी बात है। पिछले सीजन में बाबा ने 12 मुरलियां चलाई। उन 12 मुरलियों की 12 मुख्य बातें, हर मुरली की एक मुख्य बात को होमवर्क के रूप में हम चर्चा करेंगे, जो बाबा ने मुख्य बात कही है, ताकि बाबा जब अभी अक्टूबर में, 12 अक्टूबर बाबा पहली बार आ रहे हैं और आपका आना भी संभवतः 12 अक्टूबर में ज्यादातर लोगों का हो और बाद में भी हो, तो जब हम बाबा के सम्मुख आए तो हमने ये होमवर्क किया हुआ हो। और इसी वे में हम पूरी 12 मुरलियों की 12 मुख्य बातों को याद रखेंगे, ठीक है। बहुत इजी वे में 12 धामों की हम यात्रा करेंगे। धाम होते हैं, कोई स्थान होता है, तो वो स्थान के साथ वो बात इजीली याद रहती है। तो 4 धाम तो हम सबके मुख्य हैं ही, जहां हम सब प्रतिदिन यात्रा करते हैं और आप सब मधुबन यात्रा करने जाएंगे भी 4 धामों की। लेकिन आज के इस सत्र में हम 12 धामों की यात्रा करेंगे और हर धाम में बाबा की सीक्वेंस वाइज, जो बाबा ने पहले से लेके 12 तक जो मुरली चलाई, हर मुरली को सीक्वेंस वाइज एक एक धाम के साथ रिलेट करते हुए उसे याद करेंगे। और जब आप इस सत्र के बाद बाहर जाएंगे तो आपको पूरी ही 12 होमवर्क याद रहेंगे। बाबा की 12 सुंदर शिक्षाएं, जो बाबा हमसे चाहते हैं कि हम अपने जीवन में लाएं, वो हमें याद रहेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने मन और बुद्धि दोनों को इस यात्रा में अच्छे से यूज करें, ठीक है। अभी पूरी तरह यहीं बैठिएगा, अभी अपने मन बुद्धि को बाहर मत जाने दीजिएगा, कमरे में और कोई कार्यों में नहीं, यात्रा करेंगे, ठीक है। मन विचार करता है, संकल्प करता है और बुद्धि उस दृश्य को देखती है। जैसे मैं अभी कहूं आपको कि चलिए दिल्ली चलते हैं, वहां आप कुतुब मीनार को देखें तो आप देख सकते हैं। आगरा चलिए, यदि मैं कहूं वहां आप ताजमहल को देखिए तो आप देख सकते हैं ना, यहां बैठे बैठे देख सकते हैं ना। मन में विचार दिया गया, संकल्प, ताजमहल, बुद्धि तुरंत ताजमहल के दृश्य को देखती है। योग में हम यही करते हैं और साथ ही अभी इस 12 धाम की यात्रा में भी हम यही करेंगे। तैयार हैं यात्रा करने के लिए? चलें फिर, बाबा की सुंदर मुरलियां, हमें बाबा के अरमान को पूरा करना है। ऐसा करें जो बाबा भी हमारा पीठ थपथपाए, हम बाबा के दिल तक नशीन बन जाएं, बाबा की नजर हमारे ऊपर आ जाए। वो तभी होता है जब उनकी शिक्षाओं को, उनके होमवर्क को हम दिल जान से लगकर करते हैं। कितना कर पाते हैं वो सेकेंडरी है, लेकिन उस पर दिल जान से कुर्बान कर देना अपने आप को कि नहीं करना है, क्योंकि बाबा ने कहा है, बाबा की नजर पड़ती और साथ ही चूंकि हिम्मत का एक कदम हमने बढ़ाया तो बाबा की मदद भी मिलती। तो चले, पहली बाबा की मुरली पहुंचे सभी डायमंड हॉल में, यात्रा डायमंड हॉल में पहुंच जाए, बैठे डायमंड हॉल में, देखें सामने बाप दादा हैं, महाज्योति बाबा सामने चमक रहे हैं दादी के तन में, और पूरे हॉल में जो भी बैठे हुए हैं सभी बिल्कुल देही अभिमानी स्थिति में बैठे हैं। जैसे पूरे हॉल में किसी का तन नहीं दिख रहा, लेकिन केवल आत्मा मणियां ही दिखाई दे रही हैं। मैं भी डायमंड हॉल में पूरी तरह देही अभिमानी स्थिति में बैठा बाबा के सामने। देखें इस दृश्य को, बाबा की सुंदर मधुर आवाज, बच्चे देही अभिमानी भाव, देही अभिमानी भाव, देही अभिमानी भाव। मैं बिल्कुल मस्तक पर चमकती हुई मणि पूरे हॉल में चमकती हुई देही अभिमानी आत्माएं सामने मंच पर बाबा महाज्योति इसी स्थिति में देखें बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते, बाप दादा भी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। देही अभिमानी, जैसे देह अभिमान बिल्कुल नेचुरल और नेचर हो गया था, वैसे बाबा चाहते हैं होमवर्क। अब देही अभिमानी स्थिति बिल्कुल नेचुरल और नेचर बन जाए। मैं भी आत्मा और जिन्हें भी मैं देख रहा हूं, मिल रहा हूं, बातें कर रहा हूं, व्यवहार कर रहा हूं, ये सब भी आत्माएं, देह का भान नहीं। देही अभिमानी बनकर हमारा पहला धाम डायमंड हॉल, और वहां हमने कौन सा अभ्यास किया? देही अभिमानी, एक शब्द याद रखें, डायमंड हॉल पहला धाम, शब्द देही अभिमानी। अभ्यास भी हमारा संपूर्ण देही अभिमानी बनने का। बाबा ने कहा, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल और नेचर हो जाए। चलें डायमंड हॉल से निकल करके हम चलें, ये कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है? प्रकाश स्तंभ। चलें यात्रा करेंगे हमारा दूसरा धाम प्रकाश स्तंभ, बड़ी दादी जी का यादगार स्थल। पहुंच जाएं सभी। और इस दूसरे धाम में पवित्रता शब्द अंडरलाइन करें, बाबा के महावाक्य, जैसे एक राज्य भविष्य में होगा वैसे एक धर्म होगा, धर्म अर्थात धारणा। तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की धारणा। तो बाबा ने होमवर्क दिया तो चेक करो, सदा मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में संपूर्ण और सदा पवित्रता के नेचर नेचुरल बने। तो एक धर्म का अर्थ है पवित्रता की धारणा नेचर और नेचुरल हो। अब अपनी डायरी में नोट करें, अपने आप को परसेंटेज दें, जो बाबा ने कहा संपूर्ण और सदा पवित्रता नेचर और नेचुरल हो जाए, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी धारणा है। मन में कितना मैं पावनता में अपने आप को प्रतिशत देता हूं, मेरा मन कितना पवित्र हुआ है, व्यर्थ से मुक्त हुआ है, अपवित्र विचारों से मुक्त हुआ है, वैसे ही वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, संबंध, संपर्क और स्वप्न मार्क्स दें अपने आप को, चेक करें। होमवर्क है बाबा का, कितने प्रतिशत पवित्र बने हैं। अभी भी दृष्टि चलायमान तो नहीं होती, अभी भी मुख से अपशब्द तो नहीं बोलते, अनावश्यक बोल तो नहीं बोलते, स्वप्न तक भी पवित्रता है। बाबा चाहते हैं पवित्रता नेचर और नेचुरल हो जाए, मुझे संघर्ष ना करना पड़े, क्योंकि अभी की हमारी पवित्रता ही भविष्य एक धर्म की नींव है, और हमारी पवित्रता हमारे पूरे 21 जन्मों की प्राप्ति का आधार है। यही हमारे इस ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, हमारी रॉयल्टी है, हमारी पब्लिसिटी है, और सारी विश्व में बाबा की प्रत्यक्षता का आधार है। चेक कर, पवित्रता में हल्कापन तो नहीं है? संपूर्ण और सदा पवित्रता। चलिए प्रकाश स्तंभ में अच्छे से चक्कर लगा लें, चेक करते हुए, और देखें पवित्रता की मूर्ति बड़ी दादी जी वहां खड़े हुए हैं। और हमें पवित्रता का ताज पहना रही है। ये कहते हुए, ये वरदान देते हुए कि संपूर्ण पवित्र भाव, संपूर्ण पवित्र भाव, संपूर्ण पवित्र भाव। ताज पहन लें दादी से और प्रण कर लें संपूर्ण पवित्रता का। कि आज से मैं मन वचन कर संबंध संपर्क दृष्टि वृत्ति स्वप्न तक भी संपूर्ण पवित्र रहूंगा रहूंगी। अपने अगले धाम की ओर। ये कौन सा स्थान है? हमारा तीसरा धाम कौन सी जगह है? ये शक्ति स्तंभ, दादी जानकी जी का यादगार स्थल। पहुंच जाए शक्ति स्तंभ में, यात्रा हमारी मन बुद्धि के 12 धामों की। हमारा तीसरा धाम शक्ति स्तंभ, दादी जानकी जी का यादगार स्थल। शब्द खुशी। देखें दादी बहुत खुशी से हम सबका स्वागत कर रही है शक्ति स्तंभ में। बाबा के महावाक्य, बाबा की तीसरी मुरली के महावाक्य होमवर्क के रूप में बाबा ने कहा, कोई भी बात आए लेकिन बातें हमारी खुशियों के खजाने को नहीं ले जाएं। अपने दिल में प्रॉमिस करो कि सदा खुश रहेंगे और सभी को खुश करेंगे। क्यों? क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं। अंडरलाइन कर लें। शक्ति स्तंभ में दादी जानकी जी के सम्मुख बाबा के महावाक्य, हम खुश रहेंगे खुश करेंगे, ये हमारे दिल की प्रॉमिस। भगवान के बच्चे यदि खुश नहीं रहेंगे तो और कौन रहेगा? बाबा ने यह भी कह दिया, बातें आएंगी लेकिन बातें हमारी खुशी को लेकर ना जाएं। बादल आ रहे हैं, आएंगे चले जाएंगे, बातें भी आएंगी चली जाएंगे लेकिन मेरी खुशी को लेकर ना जाएं। शक्ति स्तंभ में प्रॉमिस करेंगे बाबा से दादी से। तो हमारे तीसरे धाम शक्ति स्तंभ पे क्या प्रॉमिस? खुश रहेंगे खुश करेंगे। खुश रहना तो आसान है, आसान वैसे नहीं लेकिन फिर भी सहज, लेकिन खुश करना सहज है? सबको खुश करना सहज है? चलिए इसकी यहीं से प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करके जाए। इस पे अच्छे से चिंतन कीजिएगा कि कौन सी बातें हमारी खुशी को छीन लेती हैं। उन स्थितियों में हमें खुश रहना है ये खुद से प्रण करेंगे, लेकिन हमें दूसरों को खुशी देनी भी है बाबा ने कहा। चलिए खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए और एक एक पेयर बना लेंगे, जोड़े, एक एक जोड़ी बना लें। हाँ, जोड़ी बन जाइए। ठीक है, आप बहुत खुश हैं, बाबा के खुशनुमा बच्चे हैं, हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन अब होमवर्क बाबा ने जो दिया है दूसरे को खुश करना है। चले अब आपको एक दूसरे को खुश करना है, आप जो भी करें लेकिन सामने वाले को खुशी देनी है आपको। सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, वो खुश हो जाए। चलिए थोड़ा नजदीक आइए, एक दूसरे को दृष्टि नहीं दीजिए, खुश कीजिए। अच्छा बताएं, सबको खुशी मिली? मिली? हाथ हिला के बताएं। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। बैठे अपने स्थान पर। हमारे सुंदर शब्द, हमने जो उनके लिए कुछ अच्छे भाव के साथ अच्छे शब्द बोले, उसने उन्हें खुशी प्रदान की। अपनी शुभ भावना, अपने अच्छे बोल से सामने वाले को हम प्रेरित करें, उत्साहित करें, उनके स्वमान को जागृत करें, उससे उन्हें बहुत खुशी मिलती है। यदि सामने वाला थोड़ी सी तकलीफ में है, कष्ट में है, हम दो शब्द बोल देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामने वाला हल्का हो जाता है। बाबा ने हमें यही सिखाया है ना। इसलिए जब भी एक दूसरे से मिलें, हमारी वाइब्रेशन से भी खुशी मिले और साथ साथ हमारी बोल से भी खुशी सामने वाले को मिले। ऐसे शब्द ना हो कि सामने वाला दुखी हो जाए, या फिर हम सामने से आ रहे हैं और रास्ता काट के लोग निकल जाएं, मतलब बच के निकल जाएं कि भाई पता नहीं ये क्या बोल दें, ऐसा ना हो। लोग हमारी शब्द सुनना चाहें, हमारे एक एक शब्द, जैसे हम बाबा के शब्दों को सुनने के लिए, बाबा के महावाक्यों को सुनने के लिए आतुर होते हैं। बाबा कहते हैं तुम भी मास्टर सद्गुरु हो, तुम्हारे एक एक शब्द सुनने के लिए लोग आतुर रहें, ऐसे वरदानी बोल, ऐसे सुखदाई बोल हमारे हो। ठीक है, तो बाबा का ये सुंदर होमवर्क तीसरी मुरली का, खुश रहना है और खुशी देनी है। इस पर अच्छे से विचार भी कीजिएगा, वक्त कम है, अन्यथा इस पर हम लोग और गहराई पे चलते हैं। चलें चौथे धाम की ओर। हमारा चौथा धाम अव्यक्त लोक। अव्यक्त लोक शब्द याद करें, टर्न इन रिटर्न। बाबा ने दादी गुलजार जी के माध्यम से 1969 से लेकर 2017 तक हम सबकी कितनी पालना की, कितनी पालना की। 16-16 घंटे बैठ करके बाबा ने मुरली सुनाई, हम सबको सजाया, श्रृंगारा, संवारा, संपूर्ण सृष्टि का, तीनों लोकों का गुह्य से गुह्य ज्ञान दे दिया हमें। योग युक्त होने में, धारणा युक्त होने में हमारी मदद की, अब भी कर रहे हैं। तो जो इतनी अव्यक्त पालना बाबा ने हमें दी है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, चौथा धाम शब्द टर्न इन रिटर्न। बाबा के महावाक्य चौथी मुरली के, प्यार का रिटर्न तो देंगे ना। तो प्यार का रिटर्न है, अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो, टर्न करो। तो अपनी डायरी में नोट करें, चौथे धाम में ही डायरी में नोट करें, मैं इस भट्टी से क्या टर्न करके जाऊंगा, क्या टर्न करूंगा, जैसा आया था वैसा मैं नहीं जाऊंगा, प्यार का रिटर्न दूंगा बाबा को, खुद को टर्न करके। नोट करें अपनी डायरी में, क्या टर्न देंगे, और आज से इस पे वर्क करें। नहीं, ये छोड़ के ही मुझे जाना है, ये बाबा को अर्पित करके ही जाना है, इस बात में मैं टर्न होके ही जाऊंगा, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो काम की भावना है, चाहे वो लोभ है, चाहे ईर्ष्या है, चाहे व्यर्थ है, चाहे परचिंतन है, वॉट एवर, मुझे टर्न करना। मुझे पता है कि मेरी कमी क्या है, पता होना चाहिए, जिसे हमें बदलना है, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। और बाबा ने इतना हमें दिया है, तो क्या बाबा के प्यार के रिटर्न में मैं एक चीज टर्न नहीं कर सकता, एक छोटी सी चीज परिवर्तित नहीं कर सकता। लोग तो भगवान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, भक्त अपना गला काट के चढ़ा देते हैं, मैं एक छोटी सी कमी नहीं चढ़ा सकता। बात करेंगे, नोट करें अपनी डायरी में, क्या टर्न करूंगा, ये चीज मुझे टर्न करनी ही है, परिवर्तित करनी ही है, बाबा को देके जाना ही है, जो कमी मेरे पुरुषार्थ में बाधक है, जो कमी बाबा को प्रिय नहीं है, मुझे प्रिय नहीं है, और जो मुझे बाबा से दूर करती है। नोट कर और इस पर एकांत में बैठकर बहुत गहराई से वर्क करना है। इसे एक डायरी के पेज पर लिखकर अच्छे से बाबा के पास बैठेंगे बाद में जाकर के, और बाबा को अर्पित करेंगे बाबा के कमरे में, बाबा आपके प्यार के रिटर्न में मैं ये टर्न कर रहा हूं। स्लिप बाबा के पास देंगे। जब भी आप जाओ बाबा के रूम में टर्न, ठीक है। तो हमारा चौथा धाम अव्यक्त लोक, टर्न इन रिटर्न, टर्न इन रिटर्न, प्यार में मुझे बदलना है। नोट किया सभी ने क्या टर्न करना है? हाथ उठाएं जिन्होंने नोट किया, हाथ उठाएं। वेरी गुड। हमें करना है ऑनेस्टली, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। जितना खुद के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, छुपाएं नहीं। क्या हम खुद से छुपा सकते हैं किसी चीज को, अपनी अंतरात्मा से? क्या बाबा से कोई चीज छुपाई जा सकती है? चलो लोगों से छिपाया जा सकता है कि इन्हें को क्या पता चलता है, लेकिन क्या अपनी आप से, क्या बाबा से कोई चीज छुपाई जा सकती है? नहीं। इसीलिए मुझे टर्न करना है। चले पांचवे धाम की ओर। ये कौन सा धाम है, कौन सा धाम है? जिस धाम में आप बैठे हुए हैं, ज्ञान सरोवर। शब्द बंधन मुक्त। बाबा ने वरदान ही दिया है ज्ञान सरोवर को कि साधारण अवस्था में, साधारण स्थिति में आएंगे ज्ञान सरोवर और फरिश्ता स्थिति का अनुभव करके जाएंगे। साधारण आएंगे, फरिश्ता बन के जाएंगे। तो ज्ञान सरोवर में बंधन मुक्त, मैं बंधन मुक्त फरिश्ता। देखिए अपने आप को, विजुलाइज करें। कल भी दीदी ने हमें सौगात में फरिश्ते की ड्रेस दी ना, फरिश्ते बन जाए। मैं बंधन मुक्त डबल लाइट फरिश्ता हूं ज्ञान सरोवर में। बाबा के महावाक्य, बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनो। यदि हाय हाय कहते हैं तो बंधन है, और फ्लाई फ्लाई करना अर्थात बंधन मुक्त होना। तो हाय हाय मत करो, हाय ये क्या हो गया, हाय ये कैसे हो गया, हाय हाय बंधन में ले आता है। बाबा ने कहा फ्लाई फ्लाई फ्लाई, फरिश्ते हो ना, और फरिश्ते फ्लाई करते हैं। तो फरिश्ते बन के थोड़ी देर बैठ जाएं। देखें ज्ञान सरोवर में मैं बंधन मुक्त फरिश्ता, ज्ञान सरोवर में विचरण करता हुआ बिल्कुल डबल लाइट। जैसे ज्ञान सरोवर में इस भट्ठी में आते ही बाबा ने मेरे सारे बोझ हर लिए हैं, मुझे चिंता मुक्त कर दिया है, मेरे सभी सूक्ष्म स्थूल बंधनों को काट दिया है। मैं डबल लाइट फरिश्ता, बिल्कुल बंधन मुक्त। देखो इसी हॉल में बैठे हो आप, ये वो हॉल है जहां बाबा आए थे, जिसके कण कण में अलौकिक वाइब्रेशंस हैं। जैसे बाबा मुझे बिल्कुल बंधन मुक्त फरिश्ते भाव का वरदान दे रहे हैं, ये कहते कि बच्चे हाय हाय नहीं, फ्लाई फ्लाई, मैं बंधन मुक्त फरिश्ता। अर्पित कर दें अपने सारे बोझ बाबा को और बिल्कुल डबल लाइट हो जाए। जिसकी चिंता स्वयं भगवान करते हो, जिनके माता पिता ही स्वयं भगवान हो, त्रिलोकी नाथ हो, उन्हें कैसा भय, कैसी चिंता, कैसा बंधन। मैं डबल लाइट फरिश्ता, अब अपनी छठवें धाम की ओर। हमारा छठवां धाम, छठवां धाम ओम शांति भवन, जहां बाबा कितनी बार आए ना, शब्द हमारा ओम शांति भवन में, हमारे छठवें धाम में स्वमान। चलिए ओम शांति भवन में अंदर पहुंच जाएं, देखें बाबा मंच पर बैठे हैं। बाबा के गले में बहुत सुंदर गुलाब की माला, स्वमान की माला है, और बाबा प्यार से मुझे अपने पास बुला रहे हैं, आओ बच्चे। मैं बाबा के पास मंच पे पहुंचता हूं और बाबा उस सुंदर स्वमान के माला को मेरे गले में पहना देते हैं। और महावाक्य उच्चारते हैं, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने एक बच्चे को अनेक स्वमानों की लिस्ट दी है, तो स्वमान की अथॉरिटी में रहो, मैं कौन। अनेक स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं, बाबा ने कहा इस स्वमान की स्मृति में रहो, मैं कौन हूं, कितना ऊंच हूं, कितना महान हूं, कितना श्रेष्ठ हूं, भगवान का राइट हैंड, भगवान का बच्चा, मास्टर त्रिलोकीनाथ, मास्टर ब्रह्मा, स्मृति में रहते हैं। बाबा ने होमवर्क दिया, याद रखो मैं कौन हूं, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो तो कभी कौन सा स्वमान सामने रखो। तो जैसे बाबा ने हमें स्वमान की माला पहनाई, हम भी एक दूसरे को स्वमान की माला पहनाएंगे ना, ठीक है। चलिए फिर से खड़े हो जाएं, एक्टिविटी करेंगे, फिर से एक एक पेयर बनाएं, इस बार पेयर चेंज कर लें, ठीक है, पेयर चेंज कर लेंगे। और जैसे बाबा ने हमें इस छठवें धाम में सुंदर माला पहनाए, हम भी एक दूसरे को स्वमान की माला पहनाएंगे, पेयर चेंज कर लें, एक दूसरे के नजदीक जाएं और एक दूसरे को सुंदर और श्रेष्ठ स्वमान की माला पहनाएंगे। कौन हो तुम, याद दिलाओ, जैसे बाबा ने कहा याद करो मैं कौन, एक दूसरे को याद दिलाएंगे आप कौन हो। चलें सभी करेंगे, याद दिलाएं एक दूसरे को, तो कौन हो तुम, कितने महान हो, कितने ऊंच हो, किस नजर से बाबा तुम्हें देखते हैं, याद दिलाएं एक दूसरे को, स्वमान की माला पहनाएंगे। पहनाए माला पहनाए, आपकी माला लंबी होनी चाहिए, छोटी माला नहीं, एक दूसरे को लंबी माला पहनाएंगे। चले प्यार से एक दूसरे के साथ स्वमान की प्यार से गले मिलकर बैठेंगे, ठीक है, प्यार से एक दूसरे से रूहानी मिलन मनाकर, प्यार से गले मिलकर, एक दूसरे को दिया ना स्वमान, एक दूसरे को माला पहनाई तो प्यार से, एक दूसरे को शुक्रिया अदा करके अपने स्थान पर बैठें। तो ये स्वमान की जो माला बाबा ने पहनाई, स्वमान की माला जो हमने एक दूसरे को पहनाए, इसे सारे दिन याद करना है। जो बाबा ने होमवर्क दिया, याद करो मैं कौन, मैं कौन, एक एक मैं के साथ एक एक स्वमान की सीट पर सेट करते चलें अपने आप को। जब भी मैं शब्द यूज किया, बाबा कहते हैं एक स्वमान की सीट पर बैठ जाओ, मैं मास्टर गॉड, मास्टर ब्रह्मा, मास्टर ऑलमाइटी, ईश्वरीय संतान, जहान का नूर, बैठाओ अपने आप को। देखो कितनी ऊंच हैं हम, हाईएस्ट हैं, होलीएस्ट हैं, रिचेस्ट हैं, लेकिन क्या याद में रहते हैं इसके? क्योंकि जितनी स्मृति होगी, जैसी स्मृति होगी वैसी ही स्थिति होगी, वैसा ही हमारा बोल, वैसा ही हमारा कर्म, वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। इस ऊंची स्मृति में रहेंगे तो छोटी मोटी बातें जो पीछे हम देखा है, खुशी गुम करने वाली बातें, वो हमारी खुशी को गुम नहीं कर पाएंगे। मैं कौन हूं, इसे अब नेचुरल नेचर बना लें। चलें अपने सातवें धाम की ओर। सातवां धाम हिस्ट्री हॉल, शब्द मनजीत जगत जीत, क्योंकि बाबा कहते हिस्ट्री हॉल में सारे व्यर्थ समाप्त कर दो, सारे व्यर्थ अर्पित करके समर्थ बन जाओ, बाबा के महावाक्य हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाए। हिस्ट्री हॉल में याद करेंगे बाबा के सुंदर महावाक्य। बाबा कहते बाप दादा अपने दिल की यही चाहना सुना रहे हैं कि अभी मनजीत जगत जीत बनना है, और बाप दादा ये होमवर्क देना चाहते हैं कि जो संकल्प करना चाहो वही चले, जो संकल्प करना चाहते हो वही चले, जो संकल्प नहीं करना चाहते वो ना चले। इसलिए चाहना बाबा की, होमवर्क बाबा का, बच्चे मनजीत जगत जीत बनो। पहुंच जाए हिस्ट्री हॉल में, संकल्प कर लें हम अब मन जीत जगत जीत अवश्य बनेंगे, अपने मन के मालिक बनेंगे। देखें मम्मा बाबा को सामने हिस्ट्री हॉल में, मेरे माता पिता कितने मनजीत हैं, इसलिए वो जगत जीत बने। मुझे भी मम्मा बाबा को फॉलो करते हुए मनजीत बनना है, मन का मालिक बनना है। तो हिस्ट्री हॉल, संकल्प मनजीत जगत जीत। चलिए स्थान बाबा की कुटिया, हमारा आठवां धाम, शब्द ड्रिल। देखें जैसे कुटिया के पास बाबा फिजिकल ड्रिल करा रहे हैं बच्चों को, और फिजिकल ड्रिल कराने के बाद कुटिया में आकर बैठ गए, और अब मन की ड्रिल करा रहे हैं। आठवां धाम बाबा की कुटिया, ड्रिल बाबा के महावाक्य बाबा कहते अपना चार्ट बनाओ। हर समय बीच बीच में जो बाप दादा ने ड्रिल सुनाई है, भिन्न भिन्न जानते हो ना, ड्रिल अशरीरी बनने की, अपने तीन स्वरूप की स्मृति की ड्रिल, ब्राह्मण फरिश्ता और देवता, इन तीनों रूपों में ड्रिल द्वारा अपने मन को बिजी रखो। इसलिए महामंत्र क्या है, मन मना भव। अपने समय और संकल्प को सफल करना ही है, व्यर्थ नहीं जाए। तो आठवें धाम में बाबा का होमवर्क हमारे लिए, बच्चे बीच बीच में ड्रिल करते रहो, मन को मन मना भव करो। तो चलिए हम ड्रिल करेंगे बिल्कुल अशरीरी, 3S के ड्रिल। आत्मा, फर्स्ट एस सोल, सेकेंड एस सुप्रीम सोल, थर्ड एस सकाश। ठीक है, ड्रिल, मन को पूरी तरह एकाग्र। फर्स्ट एस सोल, आत्मा, बिल्कुल आत्माभिमानी होकर बैठ जाए। सेकेंड एस सुप्रीम सोल, पहुंच जाए परम धाम में, बुद्धि रूपी नेत्र को बाबा के स्वरूप पर एकाग्र करें। थर्ड एस विश्व को सकाश, देखें बाबा के किरणें मुझ पर और मुझसे होते हुए सारे विश्व पर। फिर से एक आत्मा के स्वरूप पर आ जाए। सोल, दो सुप्रीम सोल, तीन सकाश, ऐसे हम बीच बीच में अलग अलग ड्रिल करेंगे। जैसे ये 3S की ड्रिल की, सोल सुप्रीम सोल सकाश, वैसे ही कभी पांच स्वरूपों की ड्रिल, कभी ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता के ड्रिल, लेकिन बाबा के महावाक्य बीच बीच में बाप दादा ने जो ड्रिल सुनाई है, ड्रिल करते रहो। आठवां धाम, बाबा की कुटिया, शब्द, ड्रिल। नौवां धाम कौन सी जगह है? बाबा का कमरा। पहुंच जाएं बाबा के कमरे में, शब्द है तीव्र पुरुषार्थ। देखें बाबा के कमरे में पहुंच जाएं, बाबा के पास बैठें, बाबा जैसे दृष्टि देते हुए अपना मोबाइल ऑफ कर लें। एक तो इस हॉल में मोबाइल लेकर ना आए, आप अपनी उन्नति के लिए आए हैं, बातचीत तो पूरे जीवन होती रहेगी। बाबा का कमरा, बाबा के सामने हम बैठे हैं और बाबा एक गिफ्ट दे रहे हैं हमें, रॉकेट की गिफ्ट देखें, और उस रॉकेट पे लिखा हुआ है तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ। बाबा के महावाक्य, बाप दादा अभी हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थ ही देखना चाहते हैं, केवल पुरुषार्थ ही नहीं, तीव्र पुरुषार्थ है। बाप दादा की आश, नौवी मुरली, नौवा धाम हमारा बाबा का कमरा, बाबा ने हमें गिफ्ट दी रॉकेट की जिसपे लिखा हुआ है तीव्र पुरुषार्थ। तो बाबा अब तीव्र पुरुषार्थी देखना चाहते हैं, और तीव्र पुरुषार्थी अर्थात, इस पर चिंतन कीजिएगा, यह आपके लिए होमवर्क है। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात क्या, मैं बाबा के दो महावाक्य आपके सामने रख देता हूं, आप इस पर चिंतन कीजिएगा। अभी जाने के बाद, भोजन के बाद, बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जब जो ज्ञान की बात याद आनी चाहिए तब वो बात समय पर याद आए, समय बीतने के बाद नहीं। ये है तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात जो करना चाहें वो कर पाएं, ऐसा नहीं कि वो केवल सोच तक रह जाए, कर्म में आए। और मम्मा ये कहा करते थे, पुरुषार्थी अर्थात जो एक बार की हुई गलती को दोबारा ना करे। तो तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जो गलती ही ना करे, यह है तीव्र पुरुषार्थ। फिर भी आप इस पर और गहराई से चिंतन कीजिएगा, क्योंकि ये बाबा की चाहना। दसवां हमारा धाम कौन सा स्थान है? शांति स्तंभ, शब्द, फुल स्टॉप। दसवीं मुरली में बाबा ने हमें होमवर्क दिया, सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो, और चेक करो कि क्या सेकेंड में फुल स्टॉप लगता है। विचारों का प्रवाह आता जा रहा है, आता जा रहा है, क्या फुल स्टॉप लगा सकते हैं? कोई बात याद आ गई पुरानी, फुल स्टॉप लगा सकते हैं? कोई व्यर्थ बातें हमसे कर रहा है, पर चिंतन कर रहा है, व्यर्थ की बातें कर रहा है, फुल स्टॉप हम लगा पाते हैं? बाबा ने कहा सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो। स्टॉप किया, परमधाम चले गए, ऐसी स्थिति, ताकि अंत में जब हलचल की स्थिति हो हम सेकेंड में फुल स्टॉप लगा के बाबा की याद में स्थित हो सके, तभी तो पास विद ऑनर होंगे। और यदि क्वेश्चन मार्क लग गया थोड़ा सा भी, आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, आपने ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने के बाद एक मीटर के बाद, दस मीटर के बाद जाके आपकी गाड़ी रुक रही है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा ना। जहां ब्रेक लगाया वहीं गाड़ी रुकनी चाहिए, उससे आगे गई एक्सीडेंट होगा, नुकसान होगा। देखें कि जब मैं चाहूं क्या फुल स्टॉप लगा पाता हूं, अभ्यास करना होगा। जितना अभी से अभ्यास करेंगे तब अंत में जाकर फुल स्टॉप लगेगा, ऐसे नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा दसवीं मुरली, सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो। देखें जैसे शांति स्तंभ में बाबा स्टॉप स्टॉप खेल रहे हैं हमारे साथ, हा? बाबा वहां शांति स्तंभ में खेला करते थे, कभी बैडमिंटन कभी क्रिकेट बच्चों के साथ। मैं भी शांति स्तंभ में पहुंचूं और जैसे बाबा कहते हैं बच्चे स्टॉप, क्या मैं पूरी तरह स्टॉप हो पाता हूं? बिल्कुल अशरीरी हो गया, सब बातें देह और दुनिया की भूल गए। या मैं स्टॉप कहता हूं और फिर भी बातें आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं, तो मैं मन का मालिक कहां हुआ? मन जीत जगत जीत में कहां हुआ? चेक चेंज। तो दसवां हमारा धाम शांति स्तंभ फुल स्टॉप। ग्यारहवां धाम हमारा बाबा का सेंटर, जिस सेंटर पर रोज हम जाते हैं, मुरली सुनते हैं, वो भी हमारा धाम है। वो धाम जहां बाबा की मुरली चलती है, वो धाम जहां बाबा के गुरु भाई रहते हैं, वो धाम जहां पवित्र हमारी बहनें रहती हैं, बाबा का धाम है। इसलिए रोज सेंटर जाकर के हमें मुरली सुननी है, रोज एक बार, सुबह सुबह, और सुबह किसी कारण से नहीं हुआ तो दोपहर हो शाम हो, लेकिन धाम की यात्रा सेंटर की यात्रा मेरी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो धाम है, पवित्र स्थल है। तो सभी जाते हैं सेंटर पर, सेंटर जाके मुरली सुनते हैं ना? हाथ उठा जो रोज सेंटर जाकर के मुरली सुनते हैं। बहुत सुनते हैं, थैंक यू। अच्छा, जो ये कहते हैं कि अब से हम रोज जाकर सुनेंगे, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो जरा हाथ उठाएं। रोज सुनेंगे, रोज सेंटर जाएंगे वो जरा हाथ उठाएं। बाबा के घर जाकर, सेंटर जाकर, उठाओ 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 उठाओ। यहां संकल्प करेंगे तो वो फलीभूत होगा, ये मत सोचो कि कैसे होगा क्या होगा। हाथ उठाएं लंबा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाबा के घर संकल्प लेकर हमें बाबा के सेंटर, ग्यारहवां धाम बाबा का सेंटर है, वो स्थान जहां बाबा प्रतिदिन अपनी सुंदर मुरली चलाते हैं। आप देखो, अंतर देख लो, बस इसको एक मास करके देखो। आप घर में मुरली सुनते हो और सेंटर जा करके मुरली सुनो, आप डिफरेंस खुद करके देखो। बाबा के सेंटर पर बाबा की उपस्थिति होती है। जब मुरली चलती है हम बाबा के उस वाइब्रेशन को फील करते हैं, वो हमारे दिल में, हमारी अंतरात्मा में उतरती है, परिवर्तन होता है। ऐसे आप घर में कहीं भी मुरली सुन लो, परिवर्तन नहीं आएगा। बाबा की बातें धारण तब होंगी, परिवर्तन तब आएगा जब बाबा के घर में विधिवत जाकर के हम मुरली सुनेंगे। इसलिए संकल्प जरूर लेकर जाना। तो ग्यारहवां जो हमारा धाम है, बाबा की मुरली, ग्यारहवीं मुरली, बाबा ने कहा जो रोज के महावाक्य सुनते हो वही होमवर्क है। अगर रोज की मुरली जो बाबा ने कहा और बच्चों ने किया, तो उसको कहा जाता है बाबा के सिकल दे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। तो हमारी रोज की मुरली जो बाबा ने सुनाई, हमारे लिए होमवर्क। आज भी जो बाबा ने सुनाई, हमारे लिए होमवर्क कि बच्चे प्यार में लवलीन रहो, सदा लवलीन रहो, सदा साथ रहो। हमारे लिए होमवर्क है कि हम सदा लवलीन और साथ कितना रहते हैं। ऐसे रोज की मुरली से एक अपने लिए महावाक्य। बारवां धाम, बारवां धाम आपका अपना घर भी, आपका घर भी धाम है। क्यों? क्योंकि आप भी तो इष्ट देव इष्ट देवी हो ना? कौन कौन इष्ट देव देवी बैठे हैं जरा हाथ उठाओ। इष्ट देव देवी, वाह, बहुत सारे इष्ट देव देवी। बाकी जिन्होंने नहीं उठाया वो कौन है? पूजा करने वाले इष्ट देव देवियों के नहीं ना, बाबा ने हम सबको इष्ट देव देवी बनाया है। तो मेरा घर भी बाबा का धाम है, रोज बाबा का वहां आह्वान करें। तो बारहवीं मुरली में बाबा ने कहा बाबा उलाहना देते हैं कि साकार में होते बाप समान कब तक बनेंगे। जब लक्ष्य ही है बाप समान बनने का, तो अभी लक्ष्य और लक्षण एक करना है, फॉलो ब्रह्मा बाप। जो संकल्प बोल कर्म करो, पहले ब्रह्मा बाप से मिलाओ, कॉपी करो। दुनिया में कॉपी करना मना है, लेकिन बाप दादा कहते हैं ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। तो देखो, मेरे घर में जैसे बाबा का, ब्रह्मा बाबा का बड़ा सा फोटो लगा हुआ है, छोटा भी रखें, लेकिन अभी इमेजिन करें बाबा का बड़ा सा फोटो घर में है, डाइनिंग हॉल में भी, मेरे बेडरूम में भी, जहां देखता हूं बाबा का बड़ा सा फोटो, और बाबा मुझे याद दिला रहे हैं बाप समान बनो, ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। तो बारहवें धाम में ब्रह्मा बाप समान ये शब्द याद करें। मेरे संकल्प, मेरे बोल, मेरे कर्म चेक करें, क्या ब्रह्मा बाप समान है? बाबा होते तो क्या करते? सिंपली एक शब्द, बाबा होते तो कैसे सोचते, बाबा होते तो कैसे बोलते, बाबा होते तो कैसे करते। थोड़ी देर रुको और रुक करके फिर सोचो, बोलो, कर्म करो, तो हम बाबा को कॉपी कर पाएंगे और बाबा के समान बन पाएंगे। ठीक है, तो हमारी बारह धामों की यात्रा हुई। देखो बाबा हमें कितने प्यार से देख रहे हैं, कितनी आशा, कितना विश्वास और कितना प्यार कि तुम ही हो वो बच्चे जो मेरी आशाओं को पूरा करोगे, तुम ही हो जो बाबा की हर शिक्षा को आचरण में लाओगे। तो बाबा को देखते हुए चलें एक बार पुनः रिवाइज कर लें अपने पूरे बारह धामों को। यात्रा करते हुए हम इसी के साथ संपन्न करेंगे, ट्यून बजाएंगे, चलें यात्रा पुनः बारह धामों की। बाबा को देखते हुए सम्मुख पहला धाम डायमंड हॉल, देखें मैं पूरी तरह देही अभिमानी होकर बैठा हूं। बाबा के महावाक्य, बच्चे देही अभिमानी स्थिति को नेचुरल और नेचर बनाओ, डायमंड हॉल देही अभिमानी स्थिति। चलें दूसरे धाम की ओर, प्रकाश स्तंभ, दादी संपूर्ण पवित्रता का ताज पहना रही है। संकल्प लें, मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है। तीसरा धाम शक्ति स्तंभ, खुशी, बाबा ने कहा प्रॉमिस करो खुश रहेंगे, खुश करेंगे, कुछ भी हो जाए अपनी खुशी गुम नहीं करेंगे। चौथा धाम अव्यक्त लोक, टर्न इन रिटर्न, मुझे अपनी कम से कम एक कमी को जरूर टर्न करना है, बाबा के प्यार का रिटर्न देना है। देख लें कौन सी कमी टर्न करेंगे। पांचवा धाम ज्ञान सरोवर, बंधन मुक्त। मैं बंधन मुक्त फरिश्ता, कोई हाय हाय नहीं, फ्लाई फ्लाई। छठवा धाम ओम शांति भवन। बाबा मुझे स्वमान की माला पहना रहे हैं ये कहते हुए याद करो मैं कौन। अपने स्वमान को याद करो। सातवां धाम हिस्ट्री हॉल मंजीत जगत जी। आठवां धाम कुटिया ड्रिल, बीच बीच में ड्रिल करो। अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता, अभी अभी ब्राह्मण। नौवां धाम बाबा का कमरा। बाबा मुझे गिफ्ट में रॉकेट देते हुए तीव्र पुरुषार्थी भाव कहते हुए मुझे अब अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र करना है। दसवां धाम शांति स्तंभ फुल स्टॉप। सेकेंड में फुल स्टॉप। ग्यारहवां धाम बाबा का सेंटर, जहां रोज बाबा की मुरली मेरे लिए होमवर्क के रूप में मुझे मिलती है। और बारहवां धाम मेरा घर, बाबा का घर, जहां बाबा के बड़े फोटोज मुझे याद दिलाते हुए कि घर में रहते भी ब्रह्मा बाप समान बन